ओम शांति। पहले अपने को हम चार्ज करते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजी। दोनों पांव हमारे सेकंड हार्ट हैं। ये हार्ट काम करता है तो ये काम करता है, ये काम नहीं करता तो ये भी नहीं काम करता। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा पंप, और वो पंप है कार्डियो पुल्मोनरी पंप, लंग्स और हार्ट। चलिए खड़े हो जाएं।
चले चले रे धारा, नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा,
तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
कहीं भी ठहरता नहीं है, आधी से तूफान से डरता नहीं है, तू न चलेगा तो चलते गिरा है। तू न चलेगा तो चलते गिरा है, मंजिल को तरते चलना होगा, तुझको चलना होगा,
तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा,
तुझको चलना होगा, तुझको चलना। जो भी रुका फिर गया वो भंवर में, नाव तो क्या बह जाए किनारा। ओ नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
वाइब्रेशन हर आत्मा का अनादि गुण है, कैरेक्टर है। जब हम सब परमधाम से शुरू करते अपना गेम, सतो प्रधानता, पवित्रता, प्यूरिटी, ये वाइब्रेशन क्रिएट करती है। वाइब्रेशन का अर्थ ही है प्रकंपन। जब हम घंटी बजाते हैं स्कूल की, पानी में पत्थर फेंकते हैं और जो वेव्स बाद में आती हैं, घंटी बजाने के बाद जो आवाज आती है वो वाइब्रेशन होता है। मेडिकल में भी एक टेस्ट किया जाता है कानों के लिए, ट्यूनिंग फॉर्क से हिट करके उसको यहां रखते हैं, यहां रखते हैं, और वो देखा जाता है कि इस व्यक्ति का कंडीशन ठीक है कि नहीं। वो भी वाइब्रेशन के ऊपर काम करता है। बाबा ने हर मुरली में शुरू से ही कहा कि ऐसा समय आएगा कि जब कुछ काम नहीं करेगा, केवल वाइब्रेशन ही काम आएंगे। और मैं वो देख रहा हूं पिछले 3-4 साल से, पूरा पैराडाइम, पूरा गेम चेंज हो गया। ये भी बाबा ने कहा, सुनने का, लिसनिंग पावर कम होता जाएगा, और वो भी देख रहा हूं। अब लोग अनुभव करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, स्वरूप देखना चाहते हैं। अगर हम सबको भी सेवा करनी है तो पहली है हम अपनी स्मृति, स्वस्थिति और वृत्ति इसको पावरफुल बनाए। जितना हमारा वृत्ति पावरफुल होगा वो वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, और जितना वाइब्रेशन पावरफुल होगा वो वातावरण, एनवायरमेंट क्रिएट करेगा। अब लोगों को वो चाहिए। पर्टिकुलरली मैंने देखा कि कोरोना के बाद खेल पूरा बदल गया, एक नया गेम आ गया, और इस नए गेम में लोग शॉर्ट, प्रिसाइस सुनना चाहते हैं। वीडियो भी वो पॉपुलर हुए जो छोटे थे, जो वीडियो बड़े थे 15 मिनट के कोई नहीं खोलता, छोटा है तो खोलता। तो ये समय ऐसा आ गया कि बाबा ने कहा केवल मुक्ति और जीवन मुक्ति हमें लोगों को देना है, और उसकी तैयारी हमें खुद को करना है। अगर हमारी स्मृति, स्वस्थिति, वृत्ति पावरफुल होगी तो हम चलन और चेहरे से सेवा कर पाएंगे, और यही सेवा अल्टीमेट है। वो चलता फिरता म्यूजियम है। एक मुरली में बाबा ने कहा, हर सेंटर, हर घर, हर भाई बहन शांति के, साइलेंस के गोले फेंके, शांति कुंड शुरू करे, या व्यक्तवाणी के ही शब्द हैं। इस उसमें क्या कहा कि मैग्नेट बन जाएं, शांति के मैग्नेट बनेंगे तब लोग अट्रैक्ट होकर आएंगे, और उसकी तैयारी हर भाई बहन को करते रहना है। जो बाबा ने कहा कि हर घर सेवा केंद्र बन जाएगा, जहां भी भाई बहन है अगर उनकी स्थिति, वृत्ति पावरफुल है तो वही स्थान मधुबन है। कल एक भट्टी की क्लास में मैं बैठा था, और उस क्लास में भी यही बताया स्थिति से स्थान बनता है, स्थान से स्थिति नहीं बनती। ये बाबा के भी शब्द हैं। स्थिति से स्थान बनता है, स्थान से स्थिति नहीं बनती है। स्थान थोड़ा टाइम हमें मदद करता है, पर अल्टीमेट हमें चलते फिरते हर काम करते हुए अपने वाइब्रेशन को नेचुरल नेचर बना दें, और जहां पर हम हैं वही परमधाम है, वही सूक्ष्म वतन है, वही सत्य को त्रेता है। संगम एक ऐसा जगह है, संगम ऐसा प्लेस है जो हमें ट्रेनिंग दे रहा है कि आने वाला समय क्या होगा। जहां हम जा रहे हैं वहां पर तुम्हें क्या करना है, और अगर हम देखें हम हैं भी क्या, आत्मा का अर्थ ही क्या है। आत्मा का अर्थ ही है एनर्जी, आत्मा का अर्थ ही है वेव्स। हम सब वेव्स से बने हुए हैं, एनर्जी से बने हुए हैं। शरीर में 50-75 trillion सेल्स हैं, ब्रेन में बिलियन सेल्स हैं, ट्रिलियन कनेक्शन हैं। हर चीज सिग्नल के ऊपर काम कर रही है। जो सिग्नल ऊपर से आ रहे हैं पूरे शरीर को चला रहे हैं। सिग्नल कहीं भी प्रॉब्लम में आते हैं तो बीमारी आती है। सिग्नल्स डैमेज कब होते हैं? तीन कारणों से। पहला कारण है टॉक्सिन। अगर शरीर में टॉक्सिन बहुत बन रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं, बाहर नहीं आ रहे हैं, तो वो बॉडी में म्यूटेशन करता है और बीमारी लाता है। दूसरा ट्रॉमा, टॉक्सिन्स ट्रॉमा। ट्रॉमा का अर्थ है कोई घटना मैंने देख ली अपने जीवन में किसी भी समय, और उसको मैंने अंदर तक लगा ली, फील कर ली, और उसको मैं निकाल नहीं पा रहा हूं। वो घटना बार बार मेरे सामने आ रही है, तो वो भी सिग्नल्स को डैमेज करती है। तीसरा थॉट्स, टॉक्सिन्स ट्रॉमा थॉट्स, तीनों टी हैं। संकल्प, अगर हमारे संकल्प बहुत चलते हैं, अनवांटेड चलते हैं, नेगेटिव ज्यादा चलते हैं, हर समय जब कोई घटना होती है तो मेरा रिएक्शन पहला नेगेटिव होता है, तो वो भी डैमेज करते हैं। कोरोना के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आया साइकोलॉजिकली वो आया है एंजाइटी का, चिंता, एंजाइटी सिंड्रोम आ गया, और इसी के कारण डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। पूरे वर्ल्ड में मेडिकली देखें, हार्ट की बीमारी के बाद, बीपी के बाद, कैंसर के बाद, टाइप 2 डायबिटीज के बाद, स्ट्रोक के बाद डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। डिप्रेशन का अर्थ है निराशा, उमंग उत्साह नहीं है, खुशी नहीं है, चेहरे डाउन डाउन है। अगर खुशी नहीं है तो जीवन नहीं है। अगर हम सेंटर पर आते हैं, घर से निकलते हैं, और हमारे ही चेहरे अगर डाउन है, निराशा है, खुशी नहीं है, तो लोग क्या कहेंगे? ये हमारे जैसे ही हैं, ठीक है, पर अगर खुशी से आते हैं, हर समय हमारा चेहरा चमक रहा है, दमक रहा है, आंखों में उमंग उत्साह है, तो लोग कहेंगे कुछ डिफरेंट है। और इसीलिए बाबा ने कहा हमें चलता फिरता म्यूजियम बनना पड़ेगा। सेवा जो मैं कह रहा हूं चलन और चेहरे से होती है, बाकी सब सेवाएं अब कम हो गई। कितना भी बोल लो, कितना भी कुछ करा लो, उसका असर बहुत कम होता है। इसीलिए हमें भी अपने को स्व परिवर्तन करके अपने में खुशी, प्यार, शांति, ये तीनों कैरेक्टर नेचुरल नेचर हो जाएं, उसके वाइब्रेशन लोगों को मिले, जहां जाएं हम लोग फील करें कि कोई डिफरेंट आया है, लोग वेट करें कि कब ये व्यक्ति आएगा। हॉस्पिटल में अगर केवल दवाई, सर्जरी और सब लोग एक ही पैटर्न में काम कर रहे हैं तो वो हॉस्पिटल भी एक जैसे डेड ऑर्गेनाइजेशन है। दादी जानकी जी ने एक बार कहा था कि एक बार हॉस्पिटल में एक ऐसे व्यक्ति को ड्यूटी दो, जैसे ही लोग दरवाजे के अंदर आए वो व्यक्ति वहां पर बैठा रहे कुर्सी पर, और उसका काम रहेगा मुस्कुराना, खुशी देना। तो खुशी देना सबसे इंपॉर्टेंट अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है, मेरी ड्यूटी वो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है कि लोगों में उमंग, उत्साह और खुशी देना। कोर्स कराना वो ठीक है, पर उसकी कैपेसिटी, आत्माओं की कैपेसिटी कम होती जा रही है, क्योंकि हरेक का माइंड प्री ऑक्यूपाइड हो गया है। प्री ऑक्यूपाइड माइंड का अर्थ क्या है? कई तरह की फाइलें खुली हुई है, ये कर लूं, वो कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, वहां जाऊं, ये करूं, तो आदमी उसी फाइल में घूमता रहता है, तो वो क्या सुनेगा? उसका पूरा स्पेस, डाटाबेस, उसका पूरा कह लें 64 GB का भी डाटा फुल है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? खाली तो करना पड़ेगा, और खाली करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो चीज काम की नहीं है उसको लेट गो करो, जाने दो, हाथ उठाओ और कहो आई एम हेल्दी, सब कुछ ठीक है, लेट गो करो, जाने दो। जो चीज काम की नहीं वो खरीदो भी नहीं। वही चीज लो जो जरूरी है, काम की है। ये वास्तुशास्त्र में भी कहते हैं, अगर कोई चीज आपने लेकर घर में रख दी, उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो वो एनर्जी ब्लॉक करती है। तो बीच बीच में क्या करें? उसको खाली करें। ऐसे ही अपने इस कंप्यूटर में, माइंड में, वो चीजें, वो थॉट्स खाली करें। हमारा सॉफ्टवेयर क्या है? चार है। हमारा सॉफ्टवेयर है TEAM, लिख लो, TEAM। टी का अर्थ है थॉट्स, ई का अर्थ है इमोशन, ए का अर्थ है एटीट्यूड, एम का अर्थ है मेमोरी, संकल्प थॉट्स, भावनाएं इमोशन, ए एटीट्यूड हमारा दृष्टिकोण वृत्ति, एम मेमोरी। हर एक आत्मा के अंदर मेमोरी डाटा पड़ा हुआ है। बचपन से ही जैसे हम बड़े होते हैं, मां के पेट से लेकर 7 साल और 9 साल तक 3 लाख से ज्यादा प्रोग्राम डाउनलोड कर लेती है एक आत्मा। जो भी वो देख रही है, आत्मा फील कर रही है, वो प्रोग्राम उसके अंदर डाउनलोड हो जाता है। अब बड़े होने पर भी वही प्रोग्राम मेजर काम करता है। पर्सनालिटी का फॉर्मेशन बचपन से शुरू हो जाता है, जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। बाद में वो इकट्ठा हो गया और उसी के अनुसार वो काम करता रहता है। अगर सॉफ्टवेयर ठीक है तो हार्डवेयर ठीक है। हमारा शरीर क्या है, बॉडी क्या है, हार्डवेयर है। ये कुछ नहीं कर रहा, जो यहां हो रहा है वो यहां हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल में डाइट में कम भी कर लूं खाने में, पर लीवर हमारा 2/3 कोलेस्ट्रॉल बनाता ही बनाता है। अब डाइट में तो कंट्रोल कर लिया, पर लीवर तो बना ही रहा। और स्ट्रेस है, एंजाइटी है, नेगेटिव थिंकिंग है, तो वो तो और गड़बड़ करेगा। इसलिए सॉफ्टवेयर ठीक है तो हार्डवेयर ठीक है। और बाबा सिखा रहा है हमें सॉफ्टवेयर को पावरफुल बनाना। बाबा का पूरा गेम जो है वो हमारा सॉफ्टवेयर पर है, संकल्पों पर है, इमोशंस पर है, एटीट्यूड पर है, मेमोरी डाटा पर है, संस्कारों पर है। ये पावरफुल है तो शरीर उसका एक्सटेंशन है, शरीर उसकी ड्रेस है, शरीर उसका आवरण है। इसीलिए बाबा ने कहा आवरण वाला निवारण नहीं कर सकता। जिसके जितना टाइट आवरण है वो निवारण कुछ नहीं कर सकता। हम कौन से आवरण पकड़ लेते हैं? मैंपन का, मैं हूं, मैं हूं। तो जैसे ही हम शुरू करते हैं मैं हूं, तो गर्दन टाइट, एल्बो टाइट, बैक पेन, नी पेन सब चालू हो जाते हैं। और यहां बाबा क्या सिखा रहा है? तुम कुछ नहीं हो, कराने वाला मैं हूं, करावनहार वो है, मैं तो केवल कर रहा हूं। पर हम सोचते हैं मैं कर रहा हूं। इसीलिए जगदीश भाई जी हमेशा कहते थे, मैंने काफी उनसे सीखा और ये वर्ड बहुत अच्छा लगता है, ना दिखना है ना दिखाना है, ना दिखना है ना दिखाना है, अपने को देखना है। जितना हम दिखाने की कोशिश करेंगे, क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे, मैंने किया क्रेडिट, व्यक्ति बहुत लेने की कोशिश करता है, उसको लगता है मैं ही हूं ना, तो क्रेडिट लेते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम शुरू होते हैं। इसलिए क्रेडिट नहीं लेना है। वो करा रहा है, मैं कर रहा हूं। तो न दिखना है न दिखाना है, अपने को देखना। जो बाबा का शब्द है, अपनी गोद तो चढ़े नशा, खुद की घोटते रहो तो नशा चढ़ेगा। और जितना अच्छा घोटोगे उतने अच्छे वाइब्रेशन आएंगे। वाइब्रेशन ब्लॉक तभी होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे में मैपन आ जाता है। जितना हम हल्का रहेंगे, ट्रांसपेरेंट रहेंगे, उतना वाइब्रेशन पावरफुल होंगे। ट्रांसपेरेंट वाला ही ट्रांसफर कर सकता है। ट्रांसपेरेंट वाला ही ट्रांसफर कर सकता है। ट्रांसपेरेंट का अर्थ है अंदर बाहर एक, अंदर बाहर एक हूं। लोग ड्वेल रहते हैं, ड्वेलिटी में रहते हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ। यहां क्या सिखा रहा है बाबा? तुम एक चैतन्य एनर्जी हो, शक्ति हो, और वो अंदर भी है, हम बाहर भी हैं। हमारी नजर सबके लिए एक है, तो वाइब्रेशन लोगों को पहुंचेंगे। हमने देखा जब यज्ञ की स्थापना हुई और माउंट आबू में यज्ञ पांडव भवन में शिफ्ट हुआ, उस समय घर बहुत थिक जंगल थे, पूरा माउंट आबू जंगली जंगल था, ज्यादा खूब पानी बरसात होती थी, सांप आते थे, और जहां यज्ञ के सभी ब्रह्मा बाबा और सभी लोग रहते थे, दादियां रहती थी, सांप अंदर बाहर जाते रहते थे। कभी नहीं सुना कि सांप ने किसी को डैमेज किया। इवन सांप स्नेक आते थे तो ब्रह्मा बाबा कहते थे जाओ बच्चे को छोड़ाओ। ये क्या था? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन एनिमल्स पहुंचते हैं। हम देखते हैं अगर गली से जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, सड़क से, कुत्ते कुछ को देखकर भौंकते हैं, कुछ को देखकर नहीं भौंकते हैं, शांत रहते हैं। क्यों? क्यों? अगर वो सोचता है कि इसके वाइब्रेशन मेरे को डैमेज करेंगे, या इस व्यक्ति में डर है, फियर है, फियर वाला व्यक्ति जाएगा या वो सोचेगा, थ्रेटन करेगा, तो वो भोकेगा, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए वो करता है। पर अगर वो शांत जा रहा है तो वो भी कुछ नहीं करता। और वही बाबा हमें सिखा रहा है कि किसी भी तरह का डर अंदर नहीं रखो। 99% फियर रियल नहीं है, ओनली 1% फियर इज रियल, केवल 1% डर रियल है, बाकी 99% है ही नहीं। पर हम क्या करते हैं, वो 99% फियर को अपने अंदर रखकर चलते हैं, और जब फियर रहता है ज्यादा तो बीमारी आती है। फियर में हमारा ब्लड, डर में हमारा ब्लड दोनों पांव में आ जाता है, डर में हमारा ब्लड दोनों पांव में आ जाएगा। और हमें ब्लड चाहिए कहां? इम्यूनिटी के लिए, आंतों में और ब्रेन में। हमारी आंतें 70% इम्यूनिटी है, इसीलिए आपने देखा कोरोना में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बिके। कौन से बिके? ये काढ़ा पी लो, ये पी लो, ये पी लो, ये पी लो, इम्यूनिटी। आते सेकंड ब्रेन है, जो इस ब्रेन में होता है वो यहां होता है, इसलिए सबसे ज्यादा बीमारी आंतों की रहती है, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम रहते हैं। यहां चिंता है, डर है, घबराहट है, तो यहां भी होगा, इसीलिए फियर को कम करना। जो बाबा कहता है तुम्हें किसी भी तरह का डर नहीं रहना चाहिए, डर होगा तो वाइब्रेशन नहीं होंगे। जो जिसके अंदर डर नहीं हो उसके ही वाइब्रेशन जाएंगे। लॉर्ड महावीरा एक बार जा रहे थे, उनको एक गांव जाना था। वो एक गांव के पास पहुंचे, और पूछा मुझे वो गांव में जाना है, कौन सा रास्ता लूं? गांव वालों ने कहा दो रास्ते हैं, एक जंगल के बाहर का रास्ता है वो बड़ा है, और एक जंगल के अंदर का रास्ता है वो छोटा है, पर वहां एक बहुत डेडली पॉइजनस स्नेक है और वो उसकी फूंक से खत्म हो जाते हैं, कोई उधर से जाता नहीं है। महावीरा ने कहा ठीक है, वो उसी जंगल के रास्ते गए। वो देखते गए कि जंगल हरा भरा था और फिर धीरे धीरे कम होता गया, उनको पता लग गया कि स्नेक का एरिया आ गया। स्नेक बैठा हुआ था झाड़ के ऊपर, उसने देखा कोई जा रहा है, उसने फूंकना चालू किया, पर महावीरा बिल्कुल शांत होकर जा रहे हैं। वो नीचे उतरा और उनको उनके पास आ गया, पांव के पास, फिर भी महावीर बिल्कुल शांत। स्नेक ने उनको काटा भी पांव में, तो देखा जहां काटा वहां से दूध निकल रहा था, बिल्कुल कुछ नहीं, शांत खड़े रहे। तब स्नेक ने महावीरा ने कहा जागो जागो। फिर उसने उसके दो जन्म उसको याद आए कि उसने क्या क्या किया था स्नेक ने, और स्नेक वापस अपने झाड़ के उसमें चला गया, महावीर आगे बढ़ गए। सीक्रेट क्या था? वो बिल्कुल शांत और उनके वाइब्रेशन वहां जा रहे थे। ऐसे ही अंगुलीमार और लॉर्ड गौतम बुद्धा की स्टोरी है। लॉर्ड गौतम बुद्धा भी जा रहे हैं, गांव वालों ने कहा वहां बहुत वो डेकॉइट रहता है, सब डरते हैं, गांव में शाम के बाद कोई नहीं निकलता, सब घरों में घुस जाते हैं, इवनिंग के बाद सब दरवाजे बंद करके अपने घरों में रहते हैं। लॉर्ड गौतम बुद्धा ने कहा कोई बात नहीं। अगले दिन वो शाम को निकल पड़े उसी जगह से जहां अंगुलीमार रहता था। जैसे ही निकले अंगुलीमार ने देखा कोई आ रहा है, वह लॉर्ड गौतम बुद्धा बिल्कुल चले जा रहे हैं। वो उनके पीछे भागा अंगुलीमार, पर लॉर्ड गौतम बुद्धा चले जा रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहा है। उसने कहा रुको, तो लॉर्ड गौतम बुद्धा टर्न होकर कहते हैं वही तेरे को मैं बताने आया हूं, तू रुक जा अब। उसने कहा आपको डर नहीं लग रहा है? मैं इतना खतरनाक डाकू हूं, हर एक की उंगली काट कर उसकी माला पहनता हूं। बोला मैं तेरे को रोक नहीं आ रहा हूं, तू अब। उसने कहा मैं बहुत शक्तिशाली डाकू हूं। बोला अच्छा, ये पेड़ में से 10 पत्तियां तोड़कर ला। वो 10 पत्ती तोड़कर लाया। लॉर्ड गौतम बुद्धा ने कहा तू बहुत शक्तिशाली है ना, अब 10 की 10 पत्ती वापस लगा दे। बोला लगाऊंगा कैसे, लग नहीं सकती। बोला फिर तू काय का शक्तिशाली है, जब तू लोगों को मार रहा है, उनको जीवन दान देना सबसे बड़ा पुण्य का काम है, दुआओं का काम है। उसके बाद वो अंगुलीमार उनका शिष्य बन गया और गांव में ही सेवा देने लगा। पर जो चल रहा था लॉर्ड गौतम बुद्धा, वो केवल वाइब्रेशन, उसकी लाइट की बॉडी चल रही थी। और वही बाबा हमें सिखा रहा है कि जब हम अव्यक्त फरिश्ता बनते हैं, लाइट के फॉर्म में आते हैं, डबल लाइट में रहते हैं, ऑरा हमारा काम करेगा, वो प्रोटेक्ट करेगा। शरीर को कोई नहीं देखेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो वाइब्रेशन अगर देना है तो हमें पहले ही प्रैक्टिस करना पड़ेगी, अशरीरी की प्रैक्टिस करना पड़ेगी। जितना हमारा निराकारी रूप, अशरीरी रूप, फरिश्ता रूप अच्छा रहेगा, वो वाइब्रेशन लोगों को मिलेंगे। प्रैक्टिस यही करना है कि मैं साइलेंस की प्रैक्टिस करता हूं कि नहीं। अगर अंदर नेगेटिविटी बहुत है, नेगेटिव थॉट्स बहुत चलते हैं, तो वो भी वाइब्रेशन को ब्लॉक करते हैं। उसको क्या करना है, हमें नेगेटिव थॉट्स को छोड़ना है। चलिए खड़े हो जाएं।
उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय बाय।
Love you, Zindagi.
हाथ उठाएं और कहें आई एम द बेस्ट, मैं खुश हूं, बाबा मेरे साथ है, वाह मेरा पाठ, वाह ड्रामा। जब कभी भी लगे निराशा आए, आती है, खुशी कम होने लगे, उस समय अपने को फिर कुछ न कुछ सोमान देकर चार्ज करो, कुछ डिफरेंट करो, कुछ नया करो। बाबा ने कभी नहीं मना किया कि नयापन नहीं लाओ, क्रिएटिविटी करो, न्यूनेस करो, तो वापस वो खुशी आ जाए। कभी कभी वो करो जो आपको अच्छा लगता है। हर आत्मा को बचपन से लेकर अभी तक कुछ ना कुछ अच्छा लगता है, वो करो। मेडिटेशन का अर्थ ये नहीं है कि हमें ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना। ज्यादातर मैंने देखा आत्माएं उसी में फिक्स हो जाती हैं, और अपनी एनर्जी को वेस्ट करती हैं। वो चीज जरूर करो जो आपको खुशी देता है, जो आपके मकसद को, पर्पस को बाहर लाता है, आपके पोटेंशियल्स को बाहर लाता है, वो जरूर करो। अगर पोटेंशियल बाहर नहीं आएंगे, अंदर की जो चीजें हैं बाहर एक्सप्रेस नहीं करोगे, तो खुशी गायब होगी होगी, डिप्रेशन आएगा ही आएगा। और इसीलिए अब डिप्रेशन इतना कॉमन होता जा रहा है, क्योंकि जो पोटेंशियल्स हैं वो अंदर दबा के रखे हैं। तो बीच बीच में वो करो, चाहे म्यूजिक है, चाहे बुक पढ़ना है, पेंटिंग है, कुछ करो जिससे कि खुशी वापस आ जाए। मेडिटेशन का अर्थ ही है कि हर कार्य को मैं खुशी से कर रहा हूं। जो काम मैं पहले करता था वही कर रहा हूं। मेरा काम पहले पेशेंट देखना था, अभी भी पेशेंट देखना है, पर फर्क क्या आ गया? अब मैं जो देख रहा हूं वो खुशी से देख रहा हूं, प्यार से देख रहा हूं। मेरे में जो इरिटेशन, गुस्सा आता था, अब नहीं आ रहा। उसको कहते हैं मेडिटेशन। इसीलिए बाबा ने कहा कर्म योग। हर कर्म में मैं योग को ऐड कर रहा हूं, हर लौकिक को अलौकिक बना रहा हूं, उसको ही मेडिटेशन कहते हैं। हम उसको अलग अलग कर देते हैं, इसलिए प्रॉब्लम आता है, इसलिए ड्राइनेस आ जाती है, सूखापन आ जाता है। कभी भी अपने अंदर वो ड्राइनेस, सूखापन नहीं आए। लोग हमें देखें, फील करें, अनुभव करें और खुद पर ही एक्सपेरिमेंट करें, योग का प्रयोग करें। अगर कुछ नहीं है तो खुद पर प्रयोग करें, एक्सपेरिमेंट करें। जितना हम अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, इंपावर होंगे, शक्तिशाली होंगे। दूसरे को ज्ञान देने के पहले खुद को शक्तिशाली बनाओ। दूसरे को तो हर कोई दे सकता है, पर हमें खुद को देना है। फ्लाइट में भी क्या कहते हैं, जब हम फ्लाइट में कहते हैं तो वो क्या डायरेक्शन देते हैं कि अगर ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाए तो पहले मास्क खुद पर लगाओ, फिर दूसरे को मदद करो। हम क्या करते हैं, दूसरे को देने की ज्ञान कोशिश करते हैं, और जब खुद के ऊपर आता है कोई प्रॉब्लम, उस समय डल हो जाते हैं। मेरे ऊपर क्यों आया, मैं ही क्यों? उस समय ज्ञान की एग्जाम होती है, जब खुद पर आए और उसको ठीक करें। जापान के एक आइलैंड में एक मंकीज का ग्रुप रहता था, बंदर का। सामने समुद्र था। उस ग्रुप में से एक मंकी ने आलू को, पोटैटो को, समुद्र के पानी में धोकर खाना शुरू किया। उसको देखकर दूसरे मंकीज ने भी आलू को समुद्र के पानी में धोकर खाना शुरू कर दिया। 300 माइल दूर एक और मंकीज का ग्रुप था, उन लोगों ने भी वही करना शुरू कर दिया, समुद्र के पानी में आलू को धोकर खाना शुरू कर दिया। यह वेल प्रूव्ड टाओ ऑफ फिजिक्स में दिया गया है, किसी को पढ़ने का शौक हो तो, 100 मंकी सिंड्रोम। क्या हुआ, दोनों में कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, इस ग्रुप और इस ग्रुप में कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। इन्होंने शुरू किया तो इन्होंने भी कर दिया। 300 माइल का दौर था, कोई ईमेल नहीं था, कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई फेसबुक नहीं था। क्या हो गया, इसी को कहते हैं वाइब्रेशन। अल्टीमेटली अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था, एवरीथिंग इज imagination. हर चीज वेव्स है, एनर्जी है. सोल का लेसन बहुत डीप है, उसकी गहराई में जाओ, मंथन करो, चिंतन करो. अगर आत्मा का लेसन क्लियर है तो बाकी सब क्लियर है. पूरी साइकोलॉजी, साइकोथेरेपी आत्मा का लेसन है. और मेजर प्रॉब्लम है कि अभी तक हम उसकी गहराई में नहीं जाते. खाली बोलते हैं मैं आत्मा हूं, पर आत्मा डीपर लेवल पर. लॉर्ड गौतम बुद्ध बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, तपस्या कर रहे थे. कुछ लड़के किसी गर्ल को तंग कर रहे थे, वो लड़की भागी सामने से. लड़के वहां लॉर्ड गौतम बुद्ध से पूछते हैं, आपने किसी को देखा भागते हुए किसी गर्ल को? लॉर्ड गौतम बुद्ध ने कहा, क्या होता है लड़की? ये होता है सोल कॉन्शियस. मेल और फीमेल क्या होता है वो भी खत्म हो जाए. मैं केवल एक एनर्जी को देख रहा हूं, कॉन्शियसनेस को देख रहा हूं, उसको कहते हैं सोल कॉन्शियस. मैं एनर्जी हूं, और जब मैं एनर्जी हूं, वेव्स हूं, तो वो वेव्स जाएंगे ही जाएंगे, वो वाइब्रेशन जाएंगे ही जाएंगे. आज देखो स्पोर्ट्स वाले, फिल्म एक्टर्स, सभी कह रहे हैं आई नीड वाइब्रेशन, आई नीड वाइब्रेशन. इतना पॉपुलर हो गया, इतना पावरफुल हो गया वर्ड. और बाबा ने ये चीजें पहले ही बता दी थी कि ऐसा समय आएगा, पर अभी तक हम उसके डीप एस्पेक्ट को मंथन नहीं कर पा रहे हैं. ग्रॉस कुछ नहीं है हमारे ज्ञान में, ग्रॉस कुछ नहीं है, सब माइक्रो है, एटॉमिक एनर्जी है. परमधाम भी क्या है? एटॉमिक एनर्जी का एक सेंटर है. सत्युग त्रेता क्या है? एटॉमिक एनर्जी का एक्सटेंशन है. सत्युग में भी मैं जब प्लेन में बैठूंगा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा. बैठ गया प्लेन, मुझे ऑटोमेटिक ले जाएगा जहां जाना है. मुझे कोई की ऑपरेट नहीं करना है, ना कोई प्रोग्रामिंग उसमें डालनी है, अपने आप ले जाएगा. और वही ट्रेनिंग बाबा हमें अभी दे रहा है. इसीलिए वाइब्रेशन को पावरफुल करना है. पहली चीज, लर्न टू से नो टू नेगेटिव एरिया. जो चीज काम की नहीं है मेरे पर्पस की, नो. लर्न टू से नो टू नेगेटिव एंड वेस्टफुल थॉट्स. और जो काम हम करें उसको 100% करें, प्यार से करें, फुली करें. लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में रहकर किसी चीज को करें. जितना हम फोकस होते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, वर्तमान में रहते हैं, इस समय मैं यहां पर हूं, इस समय मैं यहां पर हूं, वही सबसे बड़ी मेडिटेशन है. आत्मा का वर्तमान में रहकर वर्तमान को एंजॉय करना, वर्तमान से खुशी लेना, वही तो मेडिटेशन है. कभी हम वहां चले जाते हैं, कभी हम वहां चले जाते हैं, तो वो चीज पुल करती है, वो चीज पुल करती है, तो कर्मातीत कब बनेंगे? कर्मातीत का अर्थ ही है कि मैं कर्म कर रहा हूं, पर कर्म का रिजल्ट मेरे को पुल नहीं कर रहा, मेरे को असर नहीं डाल रहा. मैं केवल कर्म कर रहा हूं. मेरा काम ही है कर्म करना, पर कर्म का रिजल्ट क्या होगा मेरे को पुल नहीं कर रहा, वो मेरे को खींच ही नहीं रहा है. संकल्प आ रहे हैं और कर रहा हूं। मन और बुद्धि एक हो गई, माइंड एंड इंटेलेक्ट फ्यूज हो गए। मन ने जो कहा बुद्धि ने कहा कर, पर ज्यादातर क्या होता है मन कुछ कहता है बुद्धि कुछ कहती है तो दोनों में लड़ाई होती है और वही सबसे बड़ा कंफ्लिक्ट है ह्यूमन आत्मा का, माइंड और इंटेलेक्ट का ड्युअलिटी। और जितना हम ड्युअलिटी में रहते हैं वर्तमान में नहीं रहते हैं तो फोकस नहीं रहते हैं, फोकस नहीं रहेंगे तो एकाग्र नहीं रहेंगे तो कंसंट्रेट नहीं होगा तो वाइब्रेशन कहां से आएंगे। 10 मिनट बैठो 15 मिनट बैठो पर जितना बैठो 100% बैठो तो वो योग पावरफुल होगा। हमें टाइम को नहीं देखना है, घड़ी को नहीं देखना है, टाइम से भी ऊपर उठकर मैं बैठा हूं तब कहेंगे कि हम एकाग्र हैं। वो फिर परमधाम की टिक टिक हमें सुनाई देगी। मेरी आत्मा और परमधाम की आत्मा और यूनिवर्स एक हो जाएंगे, फिर वही होगा जो होने वाला है। एक खेत में किसान काम कर रहा था, उसने घड़ी पहनी हुई थी, वो घड़ी टिक टिक करती थी। काम करते करते घड़ी गुम हो गई खेत में, शाम का समय था। घर आया, घड़ी उसने ढूंढी, नहीं मिली। घर आया तो उसके लड़के ने पूछा क्या हुआ, लड़के ने फादर ने कहा कि घड़ी वहां गुम हो गई। लड़के ने पूछा कहां गिरी थी, तो फादर ने कहा अप्रोक्सीमेट वो एरिया था। लड़का आया, लड़का शांत होकर खड़े हो गया, जैसे ही वो शांत हुआ टिक टिक की आवाज सुनाई थी और वो घड़ी मिल गई। वो टिक टिक परमधाम की यूनिवर्स की चलती रहती है, पर हम इतने प्री ऑक्यूपाइड हो गए हैं कि वो भूल जाते हैं। इसीलिए बीच बीच में कट ऑफ करो। कट ऑफ का अर्थ है विस्तार को सार में लाओ। जो चीज कम शब्दों में होती है वो करो। संडे या जब छुट्टी मिले या दिन में जब समय मिले 10 मिनट का 15 मिनट का कट ऑफ कर लो। मोबाइल टीवी सब बंद, उस समय अपने में बैठ जाओ। ये भी मत कहो कि मैं योग कर रहा हूं मेडिटेशन कर रहा हूं, कुछ नहीं, डिटैच, जीरो लेवल पर। ये कई कंट्रीज की कल्चर है। मैं पढ़ रहा था कई कंट्रीज में वो लोग 1 से वीक 1 से डे बिल्कुल कट ऑफ कर देते हैं। एक का कल्चर है कि खिड़की से ही देखना, संडे के दिन बाहर को देखना, एंजॉय करना, बर्फ पड़ी हुई है, हवा चल रही है, खाली देखना। उसको एंजॉय करो। उसको कहते हैं साइलेंस। साइलेंस केवल बैठने का काम नहीं है, साइलेंस यहां का है कि वहां थॉट्स लेवल हमारे संकल्प बिल्कुल मिनिमम में हो जाए, जिसको हम कहते हैं डेल्टा वेव, अल्फा वेव पे आ जाए। स्लो, जब हम शांत होते हैं ब्रीदिंग भी शांत होता है, वेव्स ब्रेन वेव्स भी कंट्रोल में होते हैं, तब हम सामने वाले को परख सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में दादी जानकी जी, 1997 की बात है, लंदन के अल्बर्ट हॉल की, दादी जानकी जी और यूरी गैलर। यूरी गैलर एक साइकोपैथ था, रीडर था, वो कंसंट्रेट करता था, तो लोग जैसे बैठे हुए हैं हॉल में तो जो उनकी घड़ी है या कुछ है वो रोक देता था। चम्मच है, चम्मच को देखेगा तो चम्मच बैंड हो जाएगा, वो उसका कंसंट्रेशन का पावर था। दोनों को बिठाया गया, यूरी गैलर और दादी जानकी जी को कंप्यूटर से कनेक्ट किया गया, इलेक्ट्रोड कनेक्ट किए गए कंप्यूटर पर, और धीरे धीरे दादी जानकी जी यूरी गैलर को देख रही हैं। 45 मिनट्स तक एक दूसरे को देखते रहे और दोनों की ब्रेन वेव्स एक जैसी हो गई। जो वेव्स दादी में थी वही वेव्स यूरी गैलर में आ गई। इसका अर्थ है कि हम ट्रांसफर कर सकते हैं। वाइब्रेशन में इतना पावर है कि हम दूसरे के इमोशंस को पढ़ सकते हैं और अपने ट्रांसफर कर सकते हैं। क्योंकि कई लोग पूछते हैं, वो मानता नहीं है बात, हम कैसे बोलें। और आज समय ऐसा ही है, किसी को हम करेक्ट नहीं कर सकते। हर व्यक्ति, हर आत्मा क्या हो गई है, सेंसिटिव हो गई है। किसी को करेक्ट करने भी जाओ तो प्रॉब्लम आता है, तो करना भी नहीं किसी को करेक्ट। क्या करें, मेरा पति नहीं मानता, मेरी वाइफ नहीं मानती, मेरे बच्चे नहीं मानते, कोई बात नहीं, बोलना नहीं है। क्या करना है, वाइब्रेशन देना है। वाइब्रेशन से ही हीलिंग होता है, हमारा शरीर भी हील होता है। 1/3 हीलिंग शरीर में नेचुरल होती है, अपने आप होती है। कोई दवाई नहीं लो, कुछ नहीं लो, अपने आप हील करेगा 1/3। बाकी दवाई का, डॉक्टर का, हॉस्पिटल का रोल रहता है। पर उसके लिए, हीलिंग के लिए हमें पहले शांत होना पड़ता है, वो जीरो लेवल पे जाना पड़ता है, तब हम वो वाइब्रेशन दूसरों को दे सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कोई भी चीज चाहिए तो पहले तो हम शांत होएं, फिर हमारे थॉट्स को हम जाने दें। हमारा हर संकल्प पूरे विश्व में जाता है, हर संकल्प एनर्जी और इंफॉर्मेशन को लेकर जाता है, हर संकल्प पूरे यूनिवर्स की आत्माओं में जाता है, 5 तत्वों में जाता है। इतना इंपॉर्टेंस है संकल्पों का। इसीलिए जितने हमारे थॉट्स पॉजिटिव, पावरफुल, पर्पसफुल होंगे, उतना वो वाइब्रेशन लेकर दूसरों को देंगे। डॉक्टर मार्क एक कैंसर के डॉक्टर थे, कैंसर के डॉक्टर हैं अमेरिका के, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। वो एक फ्लाइट में जा रहे हैं, उनको एक सिटी जाना था जहां उनका फंक्शन था, उनको कुछ अवार्ड मिलने वाला था। फ्लाइट में प्रॉब्लम आया, फ्लाइट को लैंड किया गया, इमरजेंसी लैंडिंग की गई। डॉक्टर मार्क बाहर आए एयरपोर्ट पर, पूछा मुझे वो सिटी जाना है, कितनी, कैसे जाऊं। तो एयरपोर्ट पे बताया 4 घंटे लगेंगे, बाय रोड जाना पड़ेगा। डॉक्टर मार्क ने कार हायर करी और कार लेकर चलाना शुरू किया। आधे रास्ते पर फिर कार में प्रॉब्लम आया, हवा तूफान चल रहा था, तो कार ने रास्ता खो दिया और एक जगह वो पहुंच गए। कुछ काम नहीं कर रहा था जीपीएस। एक घर के अंदर वहां गए तो लाइट थी, अंदर गए तो एक लेडी थी। लेडी ने उनको अंदर बुलाकर बिठाया और चाय का कप दिया। चाय पीते पीते डॉक्टर मार्क ने देखा वो लेडी कुछ प्रार्थना खड़े होकर प्रार्थना कर रही है और एक बच्चा छोटा लेटा हुआ है। प्रार्थना पूरी होने के बाद डॉक्टर मार्क ने पूछा आप क्या कर रहे थे। लेडी ने कहा मेरे बच्चे को ऐसा रेयर कैंसर है, ऐसा डिफिकल्ट कैंसर है जिसका ट्रीटमेंट केवल डॉक्टर मार्क कर सकते हैं। मैं भगवान को प्रार्थना कर रही थी कि डॉक्टर मार्क यहां आ जाएं, मैं नहीं जा सकती थी और डॉक्टर मार्क वहां पहुंच गए। ये पावर ऑफ वाइब्रेशन है और ये तभी होता है जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं। इसीलिए कहा बीच बीच में कट ऑफ करो। इसका खेल का सीक्रेट जो मैंने सीखा, बीच बीच में कट ऑफ कर दो, बिल्कुल जीरो लेवल पे चले जाओ, कोई कुछ नहीं। जो भी काम कर रहा हूं मैं उस लेवल पे रह के कर रहा हूं, चाहे खाना खा रहा हूं, पानी पी रहा हूं, नहा रहा हूं, ब्रशिंग कर रहा हूं, कट ऑफ करके कर रहा हूं। फिर आप देखोगे धीरे धीरे आपको वो थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे जो बाबा कहता जो होने वाला है वो पहले ही आ जाएगा। महारथी वो है जिसको पहले ही पता लग जाए कि क्या होने वाला है। कैचिंग पावर, ये एक बड़ा टॉपिक था जो मैंने कई बार लिया, कैचिंग पावर, और बहुत अच्छा रहा। कैचिंग पावर यानी मैं पहले से ही कैच कर रहा हूं क्या होने वाला है, और वो थॉट्स आएगा जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंट्यूजन, गट फीलिंग। गट याने जो मैंने बताया आते, गट याने सेकंड ब्रेन। जो यहां हो रहा है वो यहां पर रिफ्लेक्ट होता है। अगर जो संकल्प आ रहा है मेरे को करना है, डिसीशन लेना है और यहां पर मेरे को कंफर्टेबल है तो ले लो, कर लो। इसको कहते हैं गट फीलिंग। थॉट, वो वाला थॉट, वो संकल्प जो ब्रेन से ऊपर, आत्मा से ऊपर से आ रहा है, वो ना मन बुद्धि से आ रहा है, ना ब्रेन से आ रहा है, मेमोरी पावर से आ रहा है, वो वहां से आ रहा है बियॉन्ड दैट लेवल, जो बाबा कहता बेहद। और ये उन्हीं को आता है जो बेहद में रहना सीखते हैं। हद में रहेंगे तो हद में ही फंसे रहेंगे। जब हम बेहद है, बेहद का अर्थ ही है यूनिवर्स, बेहद का अर्थ ही है मेडिटेशन, मेडिटेशन का अर्थ ही है कि उस लिमिट से हम क्रॉस होकर बैठे हुए हैं। तो अपनी वाइब्रेशन लेवल को इंप्रूव करें, साइलेंस से, कट ऑफ से, अशरीरी अवस्था से, संकल्पों की गति को धीरे धीरे करें, ब्रीदिंग को धीरे धीरे करें, जो भी काम करें स्लो करें, इजी करें। ये भी आ गया कि जो काम मैं करूं स्लो डाउन से करूं, जल्दीबाजी में नहीं करूं, तो खुद ही ये ब्रेन वेव्स अपने आप उस पैटर्न पे आ जाती है। चलिए खड़े हो जाएं और खत्म करते हैं, टाइम हो गया अपना।